नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द प्रोग्रामर्स ब्रेन फेलियन हरमन्स की प्रोग्रामिंग और संज्ञान विज्ञान पर आधारित गैर कथा पुस्तक है। इसका उद्देश्य बेहतर एल्गोरिदम या किसी एक भाषा का पाठ पढ़ाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि कोड पढ़ते, लिखते, सीखते और साझा करते समय प्रोग्रामर का मस्तिष्क किन सीमाओं और क्षमताओं के साथ काम करता है। हरमन्स स्मृति, ध्यान, भ्रम, अभ्यास और संज्ञानात्मक भार जैसे विचारों को रोजमर्रा के सॉफ्टवेयर कार्य से जोड़ती है। पुस्तक का केंद्रीय तर्क है कि कोडिंग केवल तकनीकी निर्देश लिखने का काम नहीं, बल्कि सीमित कार्यशील स्मृति के भीतर अर्थ बनाने की प्रक्रिया है। इसलिए कठिन कोड के सामने अटकना हमेशा योग्यता की कमी नहीं होता। यह अक्सर जानकारी की अनुपलब्धता, अपरिचित पैटर्न या एक साथ बहुत अधिक मानसिक मांग का परिणाम होता है। पुस्तक कोड पढ़ने, उसके बारे में सोचने, उसे लिखने और टीम में उस पर काम करने के व्यावहारिक तरीकों में इन सिद्धांतों को लागू करती है। इसका स्वशोध आधारित है, पर लक्ष्य सीधे उपयोगी आदतें देना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कार्यशील स्मृति की सीमा और कोड समझने में चंकिंग की भूमिका। पुस्तक का आधार यह है कि प्रोग्रामर की कार्यशील स्मृति सीमित होती है। जब कोई व्यक्ति नया या जटिल कोड पढ़ता है तो उसे एक साथ नाम, नियंत्रण प्रवाह, प्रकार, नियम और अपेक्षित परिणामों को मन में रखना पड़ता है। यदि ये सूचनाएं अलग अलग इकाइयों की तरह बनी रहे तो मानसिक क्षमता जल्दी बढ़ जाती है और भ्रम पैदा होता है। हरमन्स इस कठिनाई को व्यक्तिगत कमी मानने के बजाय संज्ञानात्मक सीमा के रूप में देखती है। अनुभवी डेवलपर अक्सर परिचित संरचनाओं को बड़े अर्थपूर्ण समूहों अर्थात चंक्स के रूप में पहचान लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी सामान्य त्रुटि जांच, पुनरावृत्ति या डेटा रूपांतरण की संरचना को वे हर पंक्ति अलग से नहीं पढ़ते। नए प्रोग्रामर के पास ऐसे चंक्स कम होते हैं, इसलिए वही कोड अधिक भारी लगता है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि समझ बनाने के लिए कोड को छोटे हिस्सों में बांटना, उद्देश्य लिखना, परिचित पैटर्न पहचानना और आवश्यक तथ्य बाहरी रूप में नोट करना उपयोगी है। इससे स्मृति पर दबाव घटता है। यह दृष्टि यह भी बताती है कि साफ संरचना और सुसंगत कोड शैली केवल सौंदर्य की बात नहीं है, वे पाठक को तेजी से चंक बनाने देती हैं, जिससे रखरखाव और समीक्षा दोनों अधिक विश्वसनीय बनते हैं। दूसरा, संज्ञानात्मक भार घटाना, ताकि समस्या हल करते समय सीखना भी संभव रहे। हरमन्स संज्ञानात्मक भार को यह समझने का ढांचा बनाती है कि कुछ प्रोग्रामिंग कार्य असामान्य रूप से थकाऊ क्यों लगते हैं। अंतर्निहित भार समस्या की अपनी जटिलता से आता है, जैसे कई नियमों वाली नई सुविधा। बाहरी भार उन बाधाओं से पैदा होता है जो काम का आवश्यक भार नहीं है, जैसे भ्रामक नाम, असंगत संरचना, अव्यवस्थित दस्तावेज, तकनीकी ऋण या लगातार व्यवधान। तीसरा पक्ष दीर्घकालिक स्मृति में उपयोगी ज्ञान बनाने की मानसिक मेहनत से जुड़ा है। पुस्तक का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि पहले दो बार कार्यशील स्मृति को भर दे तो व्यक्ति समाधान तक पहुंच भी जाए, फिर भी उस अनुभव से टिकाऊ सीख नहीं बन पाती। इसलिए समाधान केवल अधिक देर तक ध्यान लगाने में नहीं है, समस्या को छोटे उपकार्य में बांटना अंतर्निहित भार को संभालता है। अनावश्यक संदर्भ परिवर्तन घटाना, अच्छे उपकरण और स्पष्ट उदाहरण देना बाहरी भार कम करते हैं। जानबूझकर अभ्यास, पुनरावलोकन और अपने शब्दों में व्याख्या करना ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करता है। यह ढांचा टीमों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि खराब कोड या कमजोर प्रक्रिया का खर्च केवल समय नहीं होता, बल्कि हर डेवलपर की सीखने और निर्णय लेने की क्षमता पर अतिरिक्त दबाव भी होता है। तीसरा, कोड पठन को सक्रिय जांच में बदलने वाली बीकन और स्पीड रीडिंग तकनीकें। पुस्तक कोड पढ़ने को निष्क्रिय, पंक्ति दर पंक्ति गतिविधि मानने के बजाय उद्देश्यपूर्ण जांच के रूप में प्रस्तुत करती है। किसी फाइल को खोलते ही हर विवरण याद रखने का प्रयास कार्यशील स्मृति को अनावश्यक रूप से भर देता है। अधिक प्रभावी तरीका पहले यह प्रश्न तय करना है कि पाठक क्या जानना चाहता है, जैसे किसी बग का स्रोत एक फंक्शन की जिम्मेदारी या डेटा का प्रवाह। इसके बाद वह नामों, फंक्शन सीमाओं, परिचित संरचनाओं, टिप्पणियों और प्रमुख कॉलों जैसे संकेतों को खोज सकता है। ऐसे संकेतों को बीकन कहा जा सकता है, क्योंकि वे कोड के इरादे के बारे में अनुमान बनाने और उन्हें जांचने में सहायता करते हैं। विशेषज्ञ पाठक प्रायः इन्हीं अर्थपूर्ण संकेतों के सहारे बड़े हिस्से का नक्शा शीघ्र बनाते हैं। पुस्तक की स्पीड रीडिंग संबंधी सलाह का अर्थ सतही पढ़ाई नहीं है। इसका लक्ष्य पहले व्यापक संरचना देखना, फिर आवश्यक हिस्से पर धीरे और गहराई से जाना है। यह तरीका विशेष रूप से अपरिचित कोडबेस में उपयोगी है, जहां हर पंक्ति पर समान समय देना व्यावहारिक नहीं। साथ ही यह लेखकों पर जिम्मेदारी डालता है कि वे स्पष्ट नाम, पहचाने जा सकने वाले पैटर्न और स्थानीय रूप से समझ आने वाली संरचना दें। अच्छे बीकन पाठक को सही प्रश्न पूछने और गलत अनुमान जल्दी छोड़ने में मदद करते हैं। चौथा, नामकरण और कोड संरचना को टीम की साझा मानसिक सहायता बनाना। द प्रोग्रामर्स ब्रेन में नामकरण को केवल शैली नियम या व्यक्तिगत पसंद नहीं माना गया है। किसी वेरिएबल, फंक्शन या मॉड्यूल का नाम पाठक के लिए शुरुआती संकेत होता है कि उसे किस व्यवहार और किस तरह के डेटा की अपेक्षा रखनी चाहिए। यदि नाम एक अर्थ सुझाता है लेकिन कोड दूसरा व्यवहार करता है, तो पाठक को अपना मानसिक मॉडल बार बार बदलना पड़ता है। यह बाहरी संज्ञानात्मक भार बढ़ाता है और त्रुटि की संभावना भी। हर्मन्स का व्यापक संदेश है कि पठनीयता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति की सीमित मानसिक क्षमता का सम्मान करती है। नामों में संदर्भ, उद्देश्य और अंतर स्पष्ट होना चाहिए, विशेषकर वहां जहां डोमेन के शब्द तकनीकी शब्दों से अलग अर्थ रखते हो। इसी प्रकार सुसंगत संरचना और छोटे केंद्रित हिस्से पाठक को यह अनुमान लगाने देते हैं कि जानकारी कहां मिलेगी। पुस्तक यह भी दिखाती है कि कोड लिखना सहयोग का माध्यम है। लेखक अपने तत्काल लक्ष्य के लिए नहीं, भविष्य के पाठक के लिए मानसिक रास्ते तैयार करता है। कोड समीक्षा में इसलिए केवल सही आउटपुट देखना पर्याप्त नहीं, यह पूछना भी आवश्यक है कि क्या नाम और संरचना उस इरादे को प्रकट करते हैं जिसे अगला डेवलपर बिना लंबी खोज के समझ सके। यह दृष्टि रखरखाव योग्य सॉफ्टवेयर को मानव संचार की समस्या से जोड़ती है। अंत में, भ्रम का निदान, अभ्यास और नए डेवलपर को शामिल करने की वैज्ञानिक दृष्टि। पुस्तक भ्रम को एक उपयोगी संकेत की तरह लेती है जिसे अलग अलग कारणों में बांटकर संभाला जा सकता है। कभी भ्रम ज्ञान की कमी से पैदा होता है, जैसे किसी भाषा की वाक्य रचना या डोमेन नियम ना जानना। कभी जरूरी जानकारी मौजूद तो होती है पर पाठक तक पहुंच में नहीं होती, जैसे अस्पष्ट दस्तावेज या बिखरा हुआ कोड। तीसरी स्थिति में जानकारी उपलब्ध होती है लेकिन समस्या इतनी जटिल होती है कि उसे संसाधित करने के लिए कार्यशील स्मृति पर्याप्त नहीं पड़ती। इन स्थितियों का उपचार एक जैसा नहीं हो सकता। पहले मामले में लक्षित अध्ययन और अभ्यास चाहिए, दूसरे में बेहतर संकेत, दस्तावेज, नोट्स या सहकर्मी से संदर्भ लेना चाहिए, तीसरे में समस्या को तोड़ना, चित्र बनाना या बाहरी सहारा लेना अधिक उचित है। स्मृति और भूलने के सिद्धांतों के आधार पर पुस्तक यह भी रेखांकित करती है कि एक बार पढ़ लेना स्थायी सीख नहीं बनाता। अंतराल के साथ पुनरावृत्ति और सक्रिय याद करना ज्ञान को मजबूत करते हैं। ऑनबोर्डिंग के संदर्भ में इसका अर्थ है कि नए सदस्य को केवल दस्तावेजों की सूची देना पर्याप्त नहीं, उसे छोटे अर्थपूर्ण कार्य, स्पष्ट संदर्भ, प्रश्न पूछने की जगह और कोड पर अपने नोट बनाने के अवसर चाहिए। इस तरह टीम सीखने को व्यक्तिगत संघर्ष के बजाय डिजाइन की जा सकने वाली प्रक्रिया मानती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन डेवलपरों के लिए सबसे उपयोगी है जो अपरिचित कोडबेस, जटिल रखरखाव कार्य, नई भाषा या टीम में ज्ञान के अंतर से नियमित रूप से जूझते हैं। कुछ अनुभव वाले प्रोग्रामर इसमें अपनी रोजमर्रा की उलझनों का स्पष्ट ढांचा पाएंगे, जबकि वरिष्ठ डेवलपर, प्रशिक्षक और तकनीकी नेतृत्व वाले लोग इससे समीक्षा, दस्तावेज और ऑनबोर्डिंग को बेहतर ढंग से डिजाइन कर सकते हैं। आरंभिक स्तर के पाठक भी इसके विचारों से लाभ ले सकते हैं, हालांकि इसे प्रोग्रामिंग की बुनियादी शिक्षा का विकल्प नहीं समझना चाहिए। इसकी शक्ति इस बात में है कि यह सलाह को केवल व्यक्तिगत अनुभव या कोडिंग संस्कृति के नियमों के रूप में पेश नहीं करती। यह संज्ञान विज्ञान के विचारों को कोड पठन, समस्या समाधान, नामकरण और सहयोग के ठोस कार्यों से जोड़ती है। कई प्रोग्रामिंग पुस्तकें भाषा, आर्किटेक्चर या प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। द प्रोग्रामर्स ब्रेन अलग प्रश्न पूछती है कि इन सबको समझने वाला मानव मस्तिष्क किन परिस्थितियों में अच्छा काम करता है और किन परिस्थितियों में विफल होता है। इसलिए यह पुस्तक किसी एक तकनीक के पुराने होने पर भी अप्रासंगिक नहीं होती। इसकी सीमितता यह है कि रचनात्मक अंतर्दृष्टि और प्रोग्रामिंग के हर मानवीय पक्ष का व्यापक विवेचन इसका लक्ष्य नहीं है। फिर भी मानसिक भार, स्मृति और संचार के माध्यम से सॉफ्टवेयर कार्य को देखने का इसका ढांचा व्यावहारिक, विशिष्ट और लंबे समय तक उपयोगी है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं फिलियन हर्मन्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।